जय राधम धाव जपे हरि गोपी जाना बाना भिवन धारी गोपी जाना बाना भिवन धारी जय राधम धाव जपे हरि जय राधम धाव जपे हरि सौदानंदन ब्रज जन रंजन सौदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बन छारी जमुना तीरा बन छारी जय राधा माधव जब बिहारी जय राधा माधव जब बिहारी गोपी जाना बाना भरधारी गोपी जाना बाना भरधारी सोदानंदन ब्रज जन रंजन सोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव जय राधा माधव जब बिहारी गोपी जाना बाना भरधारी गोपी जाना बाना भरधारी सोदानंदन ब्रज जन रंजन सोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव जब बिहारी jai radha madhava nabihani gopi janavana bhavana dhani gopi janavana bhavana dhani sotanandana braja janaranjana Yamnatiya Panachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shadi Gaur Bhaktavinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shadi Gaur Bhaktavinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shadi Gaur Bhaktavinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Radha, Girdhari Radha, Girdhari Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Subhadra, Jai Balade, Jai Subhadra. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. 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 Jai Om Vishnupad Paramahansa Paivjagacharya Satara Sada Shri Srimad. His Divine Grace Srila Bhaitanya Bhakti Nanda Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki. Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paivjagacharya Srila Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj Ki. Shri Shri Gauritai Ki. Shri Shri Radha Girdhari Ki. Shri Shri Jagannath Subhadra Balaram Ki. ISKCON Meena Road Yatra Ki. Transcendental Book Distribution Marathon Ki. All glories to the Simple Devotees. All glories to the Simple Devotees. All glories to the Simple Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो भक्तों ने सुबह प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था तो मुझे पता नहीं था कि आज प्रभुपाद जी का लेक्चर आपके मीना रोड मंदिर में है तो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा और हमने क्योंकि आप इस वक्त सातवें स्कंद के नौवें अध्याय का अध्ययन कर रहे हो और इस समय ग्रंथों का मैराथन भी शुरू हो गया है तो मैंने इसी अध्याय का एक श्लोक चुना है जिसमें प्रहलाद महाराज हम सबको बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं ठीक है तो ये श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है अब सबने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना आज कई लोग देर से आए अच्छा वो प्रभुपाद जी का लेक्चर था हिंदी में मेरे ख्याल से नैरोबी में दिया था क्योंकि वहां जो इंडियन है ज्यादा गुजराती है नाई बोध विजय परा दुरत्यय वैतन वैतन आन्यस त्वा वीर्या ज्ञाना महामृता मांगा चीता सोचे तातो विमुखा चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाया भलम उर्वतो विमुधाम नाय बोध विजय परा दुरत्याय वितान्या
नाय बोध विजय परा दुरत्याय वहितरण्या
माइक में तद्वीर्य ज्ञानम अमृतम अग्नचेतसा सो चेततो विमुखा चेतस इन्द्रियार्था माया सुखाया भरम उद्वतो विमूढ़ नाय बोध विजय परा दुर्ध्याय वजान्यास स्वद्वीर्य ज्ञानम अमृत मग्न चीता सो चेततो विमुख चेतस इन्द्रियार्था माया सुखाया बलम उर्वतो विमूढ़ नाय बोध विजय परा दुर्ध्याय वितान्यास तद्वीर्य ज्ञानम अमृत मग्न चेता सो चेततो विमुख चेतस इन्द्रियार्था माया सुखाय भालम उभतो विमूढ़ान
माता जी। शब्दार्थ
न नहीं एतत् निश्चय ही उद्विजे मैं उद्विग्न तथा भयभीत हूँ पर हे पर दुरत्यय पार करना कठिन वैतरण्या वैतरणी नदी को तत्वीर्य आपके यश तथा कार्यकलाप का गायन कीर्तन करने से या वितरित करने से महाअमृत अमृत के समान आनंद के महासागर में मग्न चित्त लीन चित्त वाला सोचे मैं केवल पछता रहा हूं ततः उससे विमुख चेतसः वे मूर्ख तथा धूर्त जो कृष्ण भावनामृत से विहीन है इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति में माया सुखाय क्षणिक मोहमय सुख के लिए भरम मिथ्या भार या उत्तरदायित्व उद्वहतः उठाते हुए विमूढ़ान यद्यपि वे मूर्ख तथा धूर्त के अतिरिक्त कुछ नहीं है अनुवाद अर्थात पर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद हे श्रेष्ठ महापुरुष मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं तात्पर्य संसार भर में सारे व्यक्ति दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं यह बात वर्तमान समय के लिए भूतकाल के लिए तथा भविष्य के लिए भी सत्य है यद्यपि लोग इतने बड़े बड़े राजनैतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है भगवद गीता में यह भौतिक जगत के दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखालयम बनाने पर तुले हैं वे यह नहीं जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्य कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं भौतिक प्रकृति जो दुर्गा मानने से जाती है असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है यद्यपि सारे असुर जो इस विहीन दैत्य हैं जीवन संघर्ष में रत रहते हैं किंतु दुर्गा देवी जो अपने दसों हाथों से विभिन्न आयुधों से युक्त रहती है उन पर सीधा प्रहार करती है वे अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमो गुण पर सवारी करती है प्रत्येक व्यक्ति रजो तथा तमोगुण द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है किंतु अंततः प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है इसके दूसरे ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है इसे पार करना दुष्कर है जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मेरी इस दैवी शक्ति को जो तीन गुणों वाली है पार करना कठिन है यहाँ पर यही दुरत्यया शब्द प्रयुक्त है जिसका अर्थ अत्यंत कठिन अतएव कोई भगवान की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता इतने पर भी सारे भौतिकवादी अपने अपनी योजनाओं से उब कर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं इसीलिए उन्हें विमूढ़ प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया है यहाँ तक प्रहलाद महाराज की बात है वे तनिक भी दुखी नहीं थे क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावना वृत में परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं वे दुखी नहीं हैं। किंतु जिसके पास कृष्ण भावना मृत की लोई पूजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रत हैं, वह न केवल मूर्ख हैं अपितु अत्यधिक दुखी भी हैं। प्रहलाद महाराज एक ही साथ सुखी तथा दुखी थे। कृष्ण भावना भावित होने के कारण अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यधिक दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विषाद योजनाएं बनाते हैं।
ओम ज्ञान त्रिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थाप्य येन भूतले स्वयं रूप कदामय ददाति स्वापदंतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्राजातं सहागना रघुनाथन्वितं तं सजेवं सद्वैतं सुवधूतं प्रजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहागना ललिता श्री विशाखान्वितं शम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। ये सामने जब बच्चे खेल रहे हैं वो बीबीटी की जमीन में खेल रहे हैं। हाँ बीबीटी की जमीन में उनको खेलने की इजाजत है। हाँ सो दे हैव टेकन परमिशन। ओके आई थॉट दे टुक ओवर द बीबीटी लैब। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का जो सुबह का लेक्चर था, लेक्चर शुरू करने से पहले कहा कि मैं गुजराती नहीं बोलता। मेरे ख्याल से वो प्रभुपाद जी का लेक्चर जिस समय प्रभुपाद जी गए थे नैरोबी, उस समय इस्कॉन का एक छोटा केंद्र था तो बड़े प्रसिद्ध स्थान में, और आज प्रभुपाद जी की कृपा से उसी स्थान में एक महल जैसा बड़ा मंदिर है। आपके गुडक प्रभु वहाँ जाते हैं। तो वो लेक्चर प्रभुपाद जी का था नैरोबी में। तो क्योंकि कल से मैराथन शुरू हो गया है भारत के सब केंद्रों में, और मुझे सूचना दी गई थी कि आप लोग आज से शुरू कर रहे हो मीरा रोड में, तो मैंने आज के चर्चा के लिए भागवतम के सातवें स्कंद के नौवें अध्याय का ये प्रसिद्ध श्लोक चुना, क्योंकि आप भी इस समय भागवतम का सातवें स्कंद का नौवां अध्याय का अध्ययन कर रहे हो। तो इस नौवें अध्याय में आप प्रहलाद महाराज की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हो, जो उन्होंने प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव भगवान को किस प्रकार शांत किया। नरसिंहदेव भगवान अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए उन्होंने असुर हिरण्यकश्यपु का वध किया। भौतिक दृष्टि से तो हम हिरण्यकश्यपु को एक राक्षस असुर के रूप में जानते हैं ना। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो क्या है हिरण्यकश्यपु कौन थे, सब कहेंगे डीमन, राक्षस है ना। पर गहराई से देखा जाए वो भगवान के बड़े ऊंचे कोटि के भक्त है। जब एक समय जाए बजाए यात्रा कर रहे थे तो जब वो वैकुंठपुरी में पहुंचे तो उन्हें 6 द्वारों से तो निकल गए थे, पर 7वें द्वार में उन्हें भगवान के द्वारपालों ने रोक दिया था। जैसे अगर आप राष्ट्रपति को मिलने जाओ दिल्ली में, हम कई बार गए हैं, तो उनका जो कमरा है वो कमरे में पहुंचने से पहले आपको कोई 10-15 बड़े बड़े द्वारों के थ्रू जाना पड़ता, फिर अंत में जाकर उनका दर्शन मिलता है या परिचय होता है। तो भगवान के वैकुंठपुरी में भी ये जो जाए भी जाए थे 7वें द्वार में रोके गए थे, और कुमारस जो थे यात्रा कर रहे थे, और जब कुमारों ने देखा कि उन्हें रोक दिया गया है तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, और उन्होंने श्राप दी। जब ये चर्चा चल रही थी कुमारस की और भगवान के द्वारपालों की, तो भगवान ने सुन लिया। मान लो हम लोग यहाँ बैठे हैं और गेट में ये सामने कोई 2 व्यक्ति जोर से बात करें तो आप भी सुन लोगे। तो भगवान ने सुन लिया ये क्या चर्चा हो रही थी। भगवान आए उस घटना को देखने के लिए, और जब कुमारस ने देखा कि भगवान इतने स्नेह के साथ अपने द्वारपालों से चर्चा कर रहे हैं तो उन्हें लगा कि हमने गलती कर दी है, इन द्वारपालों को श्राप देकर हमें श्राप वापस ले लेना चाहिए। पर भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा थी कि तुम इन्हें श्राप दो, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे पृथ्वी पर अपनी अद्भुत लीला को प्रकट करने के लिए। और भगवान जब अपनी अद्भुत लीला प्रकट भी करते हैं तो किसके समक्ष, अपने भक्तों के समक्ष ही। और फिर जय विजय तैयार थे श्राप स्वीकार करने के लिए, पर उनकी एक ही इच्छा थी कि चाहे कहां भी उनको श्राप किसी रूप में भी जन्म मिले पर वो सदा भगवान का स्मरण कर सकें। उनकी इच्छा थी कि हम कभी भगवान को भूलें नहीं, सदा भगवान का स्मरण कर सकें। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी हमें भक्ति के अनेक विधियों का की चर्चा करते हैं, पर अंत में वो कहते हैं कि इन सब नियमों का मूल उद्देश्य क्या है, आप भगवान कृष्ण को हमेशा स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। और भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जैसे कि भगवान इस नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए, आधे शेर आधे मनुष्य के रूप में, साधारण व्यक्ति को अगर ये सूचना दी जाए कि भगवान अवतारित होते हैं आधे शेर आधे पुरुष के रूप में, वो कहेंगे ये कैसे संभव हो सकता है। कई साल जब इस्कॉन संस्था स्थापित हुई थी अमेरिका में तो कई लोग विरोध करते थे, जैसे आज भी करते हैं। तो एक समय हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था लॉस एंजलिस में, तो सामने के वकील ये दिखाना चाहते थे कि हमारा धर्म बनावटी धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं है। तो वो लोग भगवान नरसिंहदेव की फोटो को ले आए कोर्ट रूम में और कहने लगे माय लॉर्ड This is their God. Half man, half lion. Can you believe it? उन्होंने कहा, हे जज साहब देखो ये इन लोग मूर्खों का भगवान है, आधा पुरुष आधा पशु, ये क्या संभव है क्या? और बहुत एक बार जूरी थी, सबने हाँ हाँ दिस इज तो अद्वैत मच्युत मनादि अनंत रूपम, भगवान आपको अनंत रूपों में प्रकट कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान केवल इस रूप में आ सकते हैं, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो जो भक्ति योग के मार्ग में जो जुड़े हैं वो वैदिक शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान के अनेक अवतारों के विषय में। और भगवान के जो अनेक अवतार हैं उनका प्रमाणिक ज्ञान हमें शास्त्रों द्वारा प्राप्त होता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति दावा करे मैं भगवान का अवतार हूँ और हम उसे स्वीकार कर लें भगवान के अवतार के रूप में। जैसे आज के वातावरण में कई प्रसिद्ध प्रचारक हैं, महंत हैं, जो क्या दावा करते हैं या खुद दावा नहीं करते तो उनके शिष्य करते हैं, क्या ये भगवान है, अवतार है हमारा गुरु। तो जो प्रमाणिक अवतार हैं उनका ज्ञान हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव भगवान के रूप में, पर एक कारण इस रूप भगवान ने धारण किया क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक वर प्राप्त कर लिए थे, है कि नहीं? हिरण्यकश्यपु की योजना थी, इच्छा थी कि कभी मुझे मृत्यु का दर्शन नहीं लेना पड़े। तो ब्रह्मा ने कहा मैं ये वर तुम्हें कैसे दूं, मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु ने चापलूसी करते हुए सोचा कि मैं वही उद्देश्य को प्राप्त कर लूंगा। तो अनेक प्रकार के उन्होंने वर प्राप्त कर लिए और भगवान ने अपने शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी के वरों का पालन आदर दिया, पालन किया। प्रभुपाद जी ने इस विषय में एक लेक्चर में कहा था कि आफ्टर किलिंग हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद नरसिंहदेव भगवान ने ब्रह्मा को कहा आगे से ऐसा वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। You made my job very difficult. So don't give these blessings in future. आगे से ऐसा वर मत देना कि भगवान को सोचना पड़ा किस रूप में वो प्रकट हो सकते हैं, वो ब्रह्मा के किसी वर को तोड़े भी नहीं। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं और भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं। तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा किस प्रकार प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े और परम भगवान हर स्थान में उपस्थित हैं। और फिर जब भगवान ने देखा कि प्रहलाद महाराज की जिंदगी खतरे में, हिरण्यकश्यपु ने हर रूप से प्रयास किया क्या प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने के लिए। राखे कृष्ण मारे के आगे, मारे कृष्ण राखे के, जिसको भगवान बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, जिसको मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। और आप क्या देखते हो कि हर स्थिति में प्रहलाद जो थे उनकी सुरक्षा हुई, वो भय से रहित थे क्योंकि उनका निरंतर भाव चिंतन था परम भगवान के चरण कमलों का। इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज बिल्कुल भय से रहित थे। तो परम भगवान ने नरसिंहदेव के रूप में हिरण्यकश्यपु का वध किया और क्योंकि हिरण्यकश्यपु की योजना थी क्या प्रहलाद का वध करने के लिए भगवान इतने क्रोधित थे, भगवान अत्यंत क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे कि लक्ष्मी जी जो कि उनके चरण कमलों में रहती है सदा, वो भी उनके पास निकट जाने से डर रही थी। और लक्ष्मी भी आश्चर्य हो गई थी भगवान का ये अद्भुत रूप का दर्शन प्राप्त कर गई, क्योंकि ये तो बिल्कुल अद्भुत रूप था, किसी ने देखा ना, देखा नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा, तुम जाओ भगवान को शांत करो। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अनेक सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान की प्रशंसा की, भगवान का गुणगान किया। और जैसे ही प्रहलाद महाराज गए, भगवान ने उनके उनके निकट शिवजी भी डर गए थे, सारे देव डर गए थे भगवान का क्रोध देखकर, कोई आगे जाने को तैयार नहीं था। लक्ष्मी जी भी भगवान के अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य हो गई थी, वो भी आगे जाने को तैयार नहीं थी। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद तुम जाओ आगे। और प्रहलाद तो गए, उनको किसी प्रकार का भय नहीं था। प्रहलाद घबराए नहीं, जबकि उनके पिता ने हर प्रकार से प्रयास किया था उनका उनको समाप्त करने के लिए। जो कठिनाइयां प्रहलाद महाराज को भुगतनी पड़ी, हम अगर अगर आपको अगर कठिनाई अनुभवी करना पड़े आज, उसकी तुलना में तुच्छ है, कुछ भी नहीं। प्रहलाद महाराज की जो कठिनाई है और प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा आप पढ़ बैठे हो। तो प्रहलाद महाराज गए बिना हिचके हुए, और भगवान जैसे ही गए उनके पास, वो एकदम शांत हो गए। और प्रहलाद महाराज जी ने बड़े सुंदर स्तुतियों में भगवान के अनेक रूपों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ते हो कि अनेक भक्त सुंदर स्तुतियों द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इसी अध्याय में प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मेरे प्रिय भगवान, आप धन से आकर्षित नहीं होते, आप भौतिक खूबसूरती से आकर्षित नहीं होते, आप भौतिक सुंदरता से आकर्षित नहीं होते, आप भौतिक गुणों से आकर्षित नहीं होते, आप भौतिक कला से आकर्षित नहीं होते। तो फिर भगवान किस कार्य से आकर्षित होते हैं? हाँ, भक्ति से आकर्षित होते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त प्रयोजित। आप मुझे प्रेम के साथ एक पत्ता भी अर्पण करोगे, जल, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, प्रेम और भक्ति के साथ। पर इसका यह अर्थ नहीं कि अगर आप में योग्यता है सोने की थाली अर्पण करने के लिए भगवान के चरणों में, आप कहो तुलसी का पत्ता। ये तो भगवान ने तुलसी का पत्ता और जल कहा है ये दिखाने के लिए कि भगवान असल में भूखे हैं क्या, आपकी भक्ति के लिए। और प्रेम और भक्ति कैसे प्राप्त होगा? भगवद गीता में भगवान ने कहा, प्रेम और भक्ति के साथ प्रेम और भक्ति प्राप्त होगी भक्ति की विधियों के द्वारा। ये जो वैदिक भक्ति का मार्ग पर हम चले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में वहां महान आचार्यों के द्वारा जो नियम है इत्यादि उनका उपदेश दिया जाता है। और अगर आप ये भक्ति की विधियों का पालन करो, फिर आप ये उम्मीद कर सकते हो प्रेम प्रेम और भक्ति को अनुकूल करने के लिए। और ये प्रेम और भक्ति प्राप्त होएगी अगर हम प्रयास करें अपने अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। जैसे कि इसी सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। प्रहलाद महाराज ने यह ज्ञान प्राप्त किया था जब वो अपनी माता के गर्भ में थे। जब हिरण्यकश्यप मंदारा पर्वत में तपस्या उठा रहे थे तो उस समय प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे और देवताओं का यह भावना थी या भय था कि इस औरत के गर्भ में एक और राक्षस नहीं हो जाए। जैसे कहते हैं ना कई बार, जैसा बाप वैसा बेटा हमेशा तो सत्य नहीं निकलता है, कभी कभी निकल जाता है। तो देवताओं की चिंता थी कि बेटा भी बाप जैसे नहीं निकले। तो वो इंद्र को, तो इंद्र देवता प्रहलाद की माँ को घसीट कर ले जा रहे थे। जब वहां पहुंच गए नारद मुनि, नारद मुनि ने कहा तुम इस निर्दोष औरत को क्यों घसीट कर ले जा रहे हो? तो देवताओं ने कहा अब जानते नहीं कौन है ये औरत, ये है श्रीमती हिरण्यकश्यप और इसके घर में है एक राक्षस। तो नारद मुनि ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस औरत के घर में राक्षस नहीं, एक महान संत है। और फिर उन्होंने प्रहलाद की माँ को अपने आश्रम में रखा और दिव्य ज्ञान दिया। और ये दिव्य ज्ञान प्रहलाद ने कहाँ प्राप्त किया था? जब वो माता के गर्भ में थे। प्रहलाद के पिता ये कभी समझ नहीं पाए प्रहलाद को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है। प्रहलाद के साथ उन्होंने चौकीदार रखे थे कि प्रहलाद एकांत में एक पल के लिए भी नहीं रहे, हमेशा चौकीदार थे उनके चारों तरफ। और प्रहलाद के पिता एक संध्या संध्या और अमर का जो प्रहलाद के अध्यापक थे उन्हें बुलाया, उनसे पूछा कौन है जो कि मेरे बेटे को आकर ये दिव्य ज्ञान दे रहा है? लगता है मुझे कि वैष्णवा वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे को ज्ञान देने के लिए। ये उन्हें पता नहीं था कि ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था जब वो माता के घर में थे। तो प्रहलाद महाराज ने पिता को कहा, पिता ने पूछा ये बताओ आज पाठशाला में क्या सीखा है? और प्रहलाद ने क्या नवदा भक्ति का उपदेश दिया, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरण दशम सख्यम आत्मनिवेदन। तो प्रहलाद महाराज इस अध्याय के श्लोकों में परम भगवान को शांत कर रहे हैं अनेक स्तुतियों के द्वारा। जैसे हम कह रहे थे पूरे श्रीमद् भागवतम में सुंदर स्तुतियों के द्वारा परम भगवान का गुणगान हो रहा है। तो परम भगवान का गुणगान करना हम सबका भाव होना चाहिए। और आप सरलता के साथ ये गुणगान कर सकते हो महामंत्र के उच्चारण के साथ। स्तुतियों को आप कंठस्थ नहीं कर सकते पर महामंत्र को कंठस्थ करना तो कठिन नहीं है, वो तो आपने कंठस्थ किया है। तो महामंत्र के उच्चारण से आप परम भगवान का गुणगान कर सकते हो। तो आज के एक श्लोक में एक प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हे परमेश्वर, हे समस्त जगत के आदि आदा, वो कह रहे हैं कि मैं जो हूं मुझे भौतिक वातावरण का कुछ भय नहीं। क्यों उन्हें भय नहीं? क्योंकि प्रहलाद हर स्थिति में परम भगवान का स्मरण कर रहे थे और परम भगवान का गुणगान कर रहे थे। मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। तो एक रूप से हम भौतिक जगत के भयभीत होते हैं, यहां प्रहलाद कह रहे नहीं भी होते। तो आप पूछोगे ये कैसे संभव है? भयभीत है भौतिक जगत के हम, इसलिए हम सावधान रहते हैं। और जो व्यक्ति सावधान रहेगा उसके ऊपर भौतिक जगत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आप कहो हमें तो माया का कोई डर नहीं है, हम परमहंस हैं, और आप स्त्रियों के साथ बैठो, स्त्रियों के साथ चर्चा करो वगैरह, तो प्रभाव पड़ेगा। पर अगर आप भयभीत हो माया से और आप भक्ति की विधियों का पालन करते हो तो फिर आपको तनिक चिंता नहीं रहेगी। जैसे कि भगवान कहते हैं देवी यश गुण माई ममा माया दुर्रत है। आप ये माया का विरोध करना बहुत कठिन है, पर अगर तुम मेरी शरण में आओगे फिर तो माया का विरोध कर सकते हो। दूसरे शब्दों में आप माया से केवल जब बच सकते हो जब आप गुरु साधु शास्त्र की शिक्षा का पालन करो, फिर माया आपको छुएगी नहीं। और इस विषय में भगवद गीता का उदाहरण है कमल का फूल जो जल में है और जल को छूता ही नहीं छूता, नहीं छूता। तो इसी प्रकार भौतिक जगत में रहते हुए आप भौतिक जगत के दोषों से बच सकोगे कब? अगर आप भक्ति के नियमों का पालन करो। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां भी कहीं ठहरता हूं आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूं। तो कह रहे हैं मुझे भौतिक जगत का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां भी मैं रहता हूं क्या मैं आपकी लीलाओं का स्मरण करता हूं। तो उसी प्रकार अगर हम सब प्रयास करेंगे सदा भगवान के लीलाओं का स्मरण करने के लिए तो हमें भौतिक जगत के प्रभाव से बच सकेंगे। जैसे कि बारिश के मौसम में अगर आपके पास छाता हो तो आप अपने आप को बचा लेते हो। सर्दी के मौसम में अगर आपके पास गर्म कपड़े हो तो आप बच जाते हो। उसी प्रकार अगर हम वैद्य जाप करें, शास्त्र को पढ़ें, भक्तों की संगत में रहें, सेवा भावना रखें तो आप भी भौतिक जगत के प्रभाव से बच सकोगे। और अगर हम लापरवाही करें, गंभीरता के साथ इन नियमों का विधियों का पालन नहीं करें तो क्या परिणाम होगा? हमारे ऊपर भी माया का प्रभाव आ जाएगा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं क्योंकि मैं आपके कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूं, इसीलिए भागवत गीता में भगवान क्या कहते हैं मन मना बाबा मद भक्तो मन या जे मन मे वाच से सत्यम ते प्रति जने प्रियोश में सदा मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो। आगे कहते हैं मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा दूतों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। तो प्रहलाद महाराज को क्या चिंता थी? अक्सर साधारण समाज में लोग चिंता से भरे हुए हैं, है कि नहीं? लोग चिंता से भरे हैं कि नहीं? और दिन पे दिन ये चिंता बढ़ते जा रही है, घट रही नहीं है। पर प्रहलाद महाराज की चिंता थी, पर उनकी चिंता का एक अलग रूप है। उनकी चिंता है किस प्रकार पतितों का उद्धार हो, जो कि प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। आज के वातावरण में विज्ञानियों का प्रयास किस विषय में है? यही दुख की स्थिति को सुख में बदलने के लिए। बुढ़ापापन आ रहा है तो बुढ़ापेपन को कैसे छुपाओ? और बीमारियां हैं, एक बीमारी हल होती है अगली बीमारी पैदा हो जाती है। तो भौतिक समाज में हम सदा ये प्रयास करते हैं क्या, कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। तो जो वैष्णव भक्त है वो ये जानता है कि भौतिक संसार में एक क्षण सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि रेत स्थान में जल की प्राप्ति हो गई है तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे। तो उसी प्रकार जो अध्यात्मिकवादी व्यक्ति है वो ये जानता है कि भौतिक समाज में किसी प्रकार से सुख प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए उसका सदा प्रयास रहता है क्या, लोगों को दिव्य ज्ञान देने के लिए। तो जिस प्रकार का भाव प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं, उस प्रकार का भाव हम भक्तों में भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रहलाद महाराज के लेवल पर पहुंच गए हैं, पर यह अवश्य है कि हम उनके उदाहरण से एक प्रेरणा लेते हैं, कि नहीं? प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी बद जीवों की चिंता करनी चाहिए। और बद जीवों की चिंता करने का क्या अर्थ, हमें भी यह सोचना है किस प्रकार से हम इन पतितों का उद्धार कर सकें। यही प्रहलाद महाराज प्रकट हुए थे 500 साल पूर्व वासुदेव दत्ता के रूप में। और वासुदेव दत्ता चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय साथी भक्त है। भौतिक दृष्टि से वासुदेव दत्ता गृहस्थ आश्रम में थे, उनके भाई का नाम था मुकुंद दत्ता, और वासुदेव दत्ता गृहस्थ आश्रम में थे। वो जो भी कमाई करते थे 10 दिन में समाप्त कर देते थे वैष्णव की सेवा में। इतना तक कि उनकी पत्नी को कोई घर चलाने के लिए खर्चा नहीं रहता था 10 दिन के बाद। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने एक सेक्रेटरी दिया उनके खजाने की देखभाल करने के लिए। तो वासुदेव दत्ता एक समय चैतन्य महाप्रभु के पास गए, वो गृहस्थ थे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने कहा मांगो, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो। उन्होंने कहा पहले मुझे ये वादा करो कि आप ये पूरा करोगे। क्या उन्होंने मांगा? आप सबका उद्धार कर दो और जो परिणाम उनको भुगतना है वो किसे, मुझे भुगतने दो। ये था उनका भाव। तो वैष्णव जो हैं परा दुखा दुखी होते हैं जब वो देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति किस रूप से प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। तो वो प्रयास करते क्या उनका उद्धार करने के लिए। इसलिए भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। तो प्रचार की सेवा में बहुत बल दिया गया है हमारे वैदिक शास्त्रों में, और प्रभुपाद जी और हमारे जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने भी प्रचार की सेवा पर बहुत ही बल दिया, और इस कारण प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर भी बल दिया। ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल क्यों दिया, क्योंकि इन ग्रंथों में ज्ञान है जिसके उपयोग से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो परसों शायद गीता जयंती 28 तारीख को, और गीता जयंती के उपलक्ष हर साल हमारे भाई प्रयास करते हैं क्या, ग्रंथों का वितरण करने के लिए। क्यों, क्योंकि गीता में है क्या, गीता में है ये दिव्य ज्ञान, और ये इस दिव्य ज्ञान के सहारे ही आप इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आज समाज की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, आप लोग जो घर में रहते हो आपने तो अनुभव क्या होगा कितनी महंगाई है बाजार में। हाँ, सस्ता है कि महंगाई, मुझे को कह रहा था 30 रुपए की दाल अब 100 रुपए की हो गई है, आलू हो गया 40 रुपए की। तो ये तो केवल एक छोटा सा उदाहरण है, इसके अलावा जो दूसरी परेशानियां पानी नहीं बारिश नहीं ये नहीं ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है क्योंकि पृथ्वी पर हम कितना पाप कर रहे हैं। हमारे जैसे देश में जहां गाय को माता माना जाता है, 7 माताएं हैं जिनमें एक माता है गाय, पर गाय की सुरक्षा हो रही है नहीं, गायों पर इतना अत्याचार हो रहा है भारत में। तो जब गाय माता की सुरक्षा नहीं होगी, जब धर्म के नियमों का पालन नहीं होगा, तो प्रकृति द्वारा क्या ये कष्ट मिलेगा जो आप अनुभव कर रहे हो, और ये कष्ट दिन पे दिन बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं, आप चिंता मत करो। अगर आप सोचते हो अभी और नई सरकार आएगी वो कोई चमत्कार योजना बनाएगी, दिन पे दिन ये क्लेश बढ़ते जा रहा है ना। आप पिछले 10 सालों में देखो हर चीज और बिगड़ी है कि सुधरी है, बिगड़ते जा रही, तो दिन पे दिन ये बिगड़ते जाएगी। और आजकल के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी ये भविष्यवाणी दे रहे हैं कि समाज की स्थिति बिगड़ते जाएगी सुधरेगी नहीं। तो हमने लोगों को ये दिव्य ज्ञान देना है, हम कह सकते हैं हम तो बच गए, दूसरों को नरक में जाना हमें क्या है ना, हमारा तो उद्धार हो गया, हम तो शुद्ध मार्ग में जुड़ गए। नहीं, वहाँ भाव होना चाहिए कि हम लोगों को एक दिव्य ज्ञान दें, जैसे कि ये भागवत गीता यथारूप इसका अनुवाद विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है, और सारे विश्व में हमारे भक्त प्रयास कर रहे हैं इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए। क्यों, सारा साल करते हैं मैराथन में तो प्रयास, क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है। तो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष मैराथन होता है, आपके मीना रोड के भक्त प्रयास तो करते हैं कि नहीं, बड़े मंदिर झू में प्रयास किया जा रहा है 1.5 लाख गीता बांटने के लिए, और चौपाटी मंदिर में भी ये इसी प्रकार की योजना है, और दिल्ली मंदिर की योजना है 2 लाख। तो इस पर अलग अलग मंदिरों अलग अलग जिम्मेदारी लेते हैं, इतना ग्रंथ हम बांटेंगे, और मेरे ख्याल से पिछले साल आप भक्तों ने कितना बांटा था, 35,000 गीता। तो ये साल भी आप सब जुड़ोगे इस सेवा में, हाँ कौन को जुड़ना चाहते हैं सब। तो भगवान कहते हैं गीता में सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। और जब हम गीता देते हैं लोगों को तो हम क्या दे रहे हैं, श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जिसके उपयोग से आप अपने जीवन को सुधार सकोगे। अगर समाज में किसी प्रकार का दान आप देना चाहते हो तो सबसे ऊंचा दान है ये ज्ञान का दान। और भगवद गीता जो है भगवान की वाणी है, और जब आप भगवद गीता देते हो लोगों के हाथों में तो आप ना ही भगवान के उपदेश को दे रहे हो, आप साथ में प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त और महान आचार्यों की जो व्याख्या है उसको भी दे रहे हो। प्रभुपाद के ग्रंथों में केवल भगवान की वाणी नहीं, संतों की व्याख्या भी है। एक समय मैंने प्रभुपाद जी से पूछा, कुंभ मेला आ रहा था इलाहाबाद में 77, तो मैंने पूछा कि भक्त कह रहे हैं कि केवल हम गीता छापे श्लोक और अनुवाद, तात्पर्य नहीं, ज्यादा बिकेगी। प्रभुपाद का नहीं, तात्पर्य के बिगैर हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि तात्पर्य में शुद्ध भक्तों ने समझाया है कि भगवान की वाणी का अर्थ क्या, नहीं तो क्या आप भगवान की वाणी को लेते हो और अपना भाव जोड़ देते हो। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने गीता को प्रकाशित किया, उन्होंने किस नाम से प्रकाशित किया, भगवद गीता यथारूप। तो मैं खास आया हूं आज, क्योंकि आज आप लोग मैराथन शुरू कर रहे हो, कि आप सारे भक्त जुड़िए इस सेवा में। ये जरूर है कि जब आप इस सेवा में जुड़ते हो कई लोग साथ देंगे और कई नहीं भी देंगे। आप भारत में शाम के समय किसी शराब की दुकान के सामने से निकलो तो क्या देखोगे, इतनी भीड़ जैसे मुफ्त की शराब मिल रही है। तो हम सोचते हैं हम भी जब गीता का वितरण शुरू करें, टेबल लगाएं या ऐसी भीड़ आए हमारे सामने, हमें भी गीता दो, हमें भी दो, हमें भी दो। होए वैसा तो बड़ा अच्छा है, पर वैसा होने की संभावना कम है। तो इसका ये अर्थ नहीं कि हमें डिस्करेज हो जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करने के लिए, और महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार भगवान नित्यानंदा हरिदास ठाकुर बंगाल के घर घर जा रहे थे ये विनती लेकर कि आप हरि नाम का जाप कीजिए। कई घरों में जहां महाप्रभु जहां नित्यानंदा और हरिदास ठाकुर पहुंचे, लोगों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया, आइए बैठिए, आ गए आप हमारे घर को शुद्ध बनाने के लिए। पर कई घरों में वो जाते थे तो लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे, कहते थे जासूस आ गए हैं देखने को घर में क्या है, फिर आएंगे चुराने के लिए। और ये किसके विषय में कहा, किसके विषय में, भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर के विषय में। तो जब उनका अपमान हो सकता है तो आपकी और हमारी क्या वैल्यू है ना। तो अगर प्रचार के दौरान कोई आपका अपमान नहीं करे, हाँ कहे कि क्या तुम बार बार आ जाते हो हर साल किसी और या कोई कठोर से, आप बुरा नहीं माना, आखिर आप प्रचार कर रहे हो किसके लिए, भगवान का संदेश दे रहे हो। तो आज इस संदेश की बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि गीता का ज्ञान भारत के पाठशालाओं में दिया जाए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो प्रभुपाद जी ने इस भाव का पत्र लिखा था महात्मा गांधी को, पर उन्हें जवाब नहीं आया। तो भक्तों के प्रयास से लोग गीता पढ़ रहे हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, हमें उत्साहित होना चाहिए। तो अगर हम उत्साह से प्रयास करेंगे तो अवश्य ही साथ मिलेगा। हमें उत्साहित रहना चाहिए, क्यों नहीं, हम किसके लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान का संदेश आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप आश्चर्य हो गए कितने व्यक्ति जुड़े हैं इस गीता के वितरण के द्वारा। और कई बार हम सोचते ही नहीं, गीता गीता हम बांट देते, कोई पढ़ता ही नहीं। बहुत लोग पढ़ते हैं और गीता में इतनी शक्ति है, कोई एक श्लोक कोई समझ ले और चिंतन करे तो अपना जीवन सुधर जाएगा। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि as long as book distribution goes on, I will never die. जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है, भगवान की वाणी। तो इस साल मेरे ख्याल से आप भक्तों ने 50,000 गीता की जिम्मेदारी दी है, 50,000 गीता की जिम्मेदारी, 40,000 के लिए है, पर 50 हो सकता है। आप सब पहलवान लोग हो, आप सब अच्छे प्रचारक हो, तो आप सब प्रयास कीजिएगा। आपके तो काफी बड़ा इलाका है, गुजरात भी आपके मीना रोड का एक्सटेंशन है। तो प्रयास कीजिएगा इन ग्रंथों को आगे बांटने के लिए। कई बार लोग कहेंगे कि ये ग्रंथ है हमारे पास, तो आप कह सकते हो कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो। हम लोग गीता को जेलों में बांट रहे हैं, जैसे परसों हमारा प्रोग्राम है आर्थर रोड जेल में, वहाँ हजारों कैदियों, हम गीता को विद्यार्थियों को बांटते हैं। अभी कुंभ मेला शुरू हो रहा है जनवरी में, तो कुंभ मेला में भी बांटेंगे, हरिद्वार में कुंभ मेला 4 महीने के लिए। तो कई बार लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं पर कहते हैं आप बांट दो, हम नहीं बांट सकते, तो हम तैयार हैं। तो किसी न किसी रूप से ये गीता का ज्ञान दीजिएगा लोगों को, और हमें गीता को खुद भी पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में आप कथा पढ़ते हो कि एक भक्त थे वहां चैतन्य महाप्रभु के, वासुदेव विप्र। इस वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, इतनी बदबू आती थी उनके शरीर से कि कोई उनके निकट भी नहीं जाता था। चैतन्य महाप्रभु जी ने वासुदेव विप्र को गले लगाया, जिसका ये परिणाम हुआ कि कोढ़ की बीमारी तुरंत समाप्त हो गई और वो बदसूरत व्यक्ति खूबसूरत बन गया और इसके शरीर से सुगंध आने लगी बदबू की वजह। तो वासुदेव विप्र को भय था कि मैं अब घमंडी नहीं बन जाऊं, पहले तो कोई मेरे निकट आता भी नहीं था, अब महाप्रभु जी की कृपा से मैं इतना सुंदर बन गया हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए विनम्र रहने के लिए, व्हाट शुड आई डू टू रिमेन हम्बल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम भगवान श्री कृष्ण का उपदेश का वितरण करो, वो उपदेश जो कि तुम्हें गीता और भागवतम में प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का वितरण करो, सदा भक्तों की संगत में रहो, वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये महाप्रभु जी का आदेश था। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ उसी प्रकार इस संस्था के भक्तों का उद्धार हुआ है। उन सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम क्या करें, चैंट हरे कृष्णा और गीता और भागवत का जो संदेश है उसका वितरण करें। तो भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं 5वें स्कंद में, एक बुद्धिमान व्यक्ति जब एक अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो क्या करता है, उसके हाथों को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। तो आप सब लोगों सीधे रास्ते में जोड़िए लोगों को, और जोड़ने का माध्यम क्या है, ये गीता का ज्ञान, और गीता का ज्ञान दीजिए लोगों को, ये है सुख शांति का प्रचार। सरल कार्य तो नहीं है ये तो हम मानेंगे, जब आप प्रचार के लिए जाते हो कई स्थानों में आपका आदर होगा, कई जगह अपमान होगा, कई जगह आपकी बेइज्जती होगी, पर अगर आप सोचेगा अरे मैंने तो कभी बेइज्जती सही नहीं, आप ये प्रचार करो किसके लिए, भगवान के लिए। तो आप सब उत्साह से गीता को बांटिए, 40,000 गीता मारोगे, 40,000 लोग गीता पढ़ेंगे, या 61 गीता को 2-3 आदमी पढ़ते हैं, आप देख सकोगे ये एक रूप से सबसे ऊंची सेवा भी है समाज की। आजकल जैसे बारिश नहीं आई तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं वर्षा आती है कब, मैंने अन्न प्राप्त होता है वर्षा के कारण, और वर्षा आती है कब, जब आप यज्ञ करोगे। जब यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ थोड़ी देगी, तो वही हो रहा है आज। तो यज्ञ की आवश्यकता है समाज की सबसे बड़ी सेवा, और ये ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, गीता में। यज्ञ दान तपस्या, इन तीन कार्यों को हमें किसी हालत में नहीं त्यागना चाहिए। तो आप सब जुड़िए उत्साह के साथ, गीता को आगे बांटिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और दूसरों के जीवन को सफल बनाने में सहयोग दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब उत्साहित हो मैराथन के लिए? मैराथन कब से शुरू होगा? स्टार्टेड। कब तक चलेगा? 31 दिसंबर तक। हाँ, तो ये साल आपको एक हफ्ता एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिल रहा है। तो सब जुड़ेंगे और माताओं में भी एक बार फिर से। तो मैराथन में ये साल कौन कौन जुड़ेगा, कौन कौन जाए? सब। हाँ क्या, हाँ क्या। तो जनवरी में कार्यक्रम करेंगे और देखेंगे आप सबने कितनी मेहनत की, सबका स्कोर देखेंगे जनवरी में। हाँ। ओके, कोई प्रश्न है? हाँ रामायण चाहे तो उनको बोलो 9th कैंडो भागवतम का सेट ले लें। एक छोटी किताब है हमारे पास रामायण के ऊपर, 9th कैंडो।
हरे कृष्ण महाराज।
हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। Warm clothes.
In this way we practice our sadhana and spirituality, and we're protected by Maya. We're protected from Maya.
Yeah.
So my question is, sometimes although we try to sincerely perform our sadhana and spiritual activities, still we feel contaminated by Maya, or one may even fall down. So how to understand this? How can Maya be more powerful than our practices of bhakti?
तो इनका कहना है, प्रश्न ये है कि मैंने कहा था कि वैदिक भक्ति नियमों का पालन करो तो माया से बचोगे, पर उनका कहना है कभी कभी हम नियम का पालन करते हैं तो भी माया का आकर्षण रहता है। तो माया का आकर्षण रहेगा, पर अगर आप साथ में ज्ञान भी अनुकूल कर रहे हो तो आप इस आकर्षण का विरोध कर सकोगे। जैसे कि ज्ञान के द्वारा अज्ञानता दूर होती है, तो अगर आप साधना भक्ति रखो, उस शास्त्रों का भी अध्ययन करो, तो आप माया का विरोध कर सकोगे। अगर नहीं कर पाते तो आपको इसका में कोई भक्त दिखता ही नहीं। माया भी बलवान है, पर खुशी की बात है भगवान से कमजोर है, भक्ति ज्यादा बलवान है। तो इसके लिए अगर आप भक्ति की शरण लो तो माया का विरोध कर सकते हो। क्या प्रश्न है? प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में क्या संदेश देते हैं मैराथन में? एक समय प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा मैराथन शब्द का अर्थ क्या है। प्रभुपाद ने कहा लेस स्लीपिंग लेस ईटिंग। मैराथन के महीने में कम खाओ और कम सो, और क्या बड़ा मेहनत करो। तो मैराथन में जरा आप अधिक प्रयास कीजिएगा। रशिया जैसे देश में इस समय बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी है कि आप बाहर खड़े भी नहीं हो सकते हैं, और इस ठंड में भी हमारे भक्त मैराथन कर रहे हैं। बॉम्बे में तो बड़ा अच्छा मौसम है, है ना? ओके, उत्तर भारत में भी काफी ठंडी है ये समय। हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, जो हमको मैराथन के लिए उत्साह देने के लिए आए हैं, और हर साल इस प्रकार आते हैं। तो उनकी उत्साह की वजह से हमारा मैराथन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी जो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। तो हम उनको एक बार आभार व्यक्त करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे मैं सोच रहा था कि इस साल हम 30,000 भगवद गीता बांटेंगे, लेकिन महाराज ने 50,000 बोला तो ठीक है, वो 40 तो करना ही है,
बीच में सौदा करेंगे।
तो हर साल महाराज आते हैं तो उनका आशीर्वाद रचन भी प्रदान करते हैं, उनको ऑटोग्राफ भी देते हैं। तो भक्तों से निवेदन है, कृपया करके आप उधर भगवद गीता लीजिएगा और महाराज के कर कमलों से हस्ताक्षर भी ग्रहण कीजिएगा। हम आते हैं कि सही भक्त ये मैराथन के बहुत सीरियसली लेंगे। हम ये जो संडे हैं, रविवार को ठीक क्लास के बाद 12 बजे सारे काउंसलर्स मीटिंग है। आप सारे काउंसलिंग ग्रुप्स हैं, उन सब से आप बात करके अपना प्लान्स वगैरह तैयार कीजिएगा। अपना अपना जो कितना वितरण करेंगे उस सबका जो कोटास है वो आप ये संडे तक हमको बता दीजिए, क्योंकि कुछ ग्रुप्स है जो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो हम आशा करते हैं कि बाकी जितने भी कांग्रेगेशन अभी थोड़ा सा शादियों के चक्कर में पड़े हुए हैं और अनेकों कारणों की वजह से बहाना बना रहे हैं, तो ये जो रविवार है यानी शनिवार से ही समझ लीजिए, शनिवार को गीता जयंती है, उसके बाद आपको तो माफ़ नहीं किया जाएगा। पिछले 10-15 दिन से मैं बात करता हूँ, नहीं वो शादी में गए, ये शादी में गए, ऐसा चल रहा है।
एक चीज बोलूं, दिल्ली में पिछले साल दिल्ली मंदिर बड़े मंदिर ने 2,40,000 गीता बांटी थी, ये साल 2,00,000 कम से कम बांटेंगे। 2,00,000 में से 80,000 गीता हमारे कांग्रेगेशन भक्त बांट रहे हैं। कांग्रेगेशन भक्तों का 80,000 का कोटा है। पिछले साल कांग्रेगेशन भक्तों ने 80,000 गीता बांटी थी। वो सब आप जैसे जो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, और IOIF, तो 80,000 गीता अगर वो बांट सकते हैं तो आप क्यों नहीं बांट सकते हैं।
तो हमारे ब्रह्मचारी का मीटिंग हुआ था, उन्होंने पूरा कोटा लिया था कि पूरा 25,000 भगवदगीता बांटने के लिए। तो उसमें चंडकोपी प्रभु, अनुमाली प्रभु पूरा अग्रगण्य है। चंडमाली प्रभु अकेले उन्होंने कहा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट 5,000 भगवद गीता। तो आप सबसे निवेदन है इसमें जुड़िए, खास करके जो शनिवार को रविवार को हम मीटिंग करेंगे उसमें आप अपना अपना जो कोटा है उसको बता दीजिएगा, सारे जितने भी काउंसलर्स हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। सभी भगवद गीता ले सकते हैं महाराज के हाथों में, यू कैन टेक फोटोग्राफ। हरे कृष्ण।
Okay, for the sign book it will take me 1 hour. I know. Huh? I don't know. Huh?
Yeah?
Where is Madhu Sunan?
पिछले साल अवार्ड भी नहीं मिला, अनाउंस भी नहीं हुआ।
ये साल डबल अवार्ड दे रहे पिछले साल का, ये साल दोनों ये साल दोनों 2 साल का अवार्ड एक साथ।
पिछले साल अवार्ड भी नहीं मिला, अनाउंस भी नहीं हुआ,
तो ये पर डबल अनाउंसमेंट डबल अवार्ड।
No announcement, no awards. Last year's.
हरे कृष्णा सभी के लिए प्रसादम है, तो आप लोग प्रसादम हॉल में जाके प्रसाद पाइए। हरे कृष्णा, सभी लोग प्रसाद पाके जाइएगा, प्रसादम हॉल में सभी के लिए प्रसाद है।